आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
नंगे पैर और सीने पर हाथ, पीएम मोदी ने प्रचार के बीच देखा रामलला का सूर्य तिलक, बोले भावुक हूँ। अयोध्या में आज रामनवमी के मौके पर रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस अभिषेक को अपने टैब पर देखा। इस दौरान पीएम मोदी भावुक दिखे। उन्होंने अपने जूते उतार रखे थे और एक हाथ अपने सीने से लगाकर रामलला की आराधना करते दिखे। पीएम मोदी ने इस पल की दो तस्वीरें भी जारी की हैं। उन्होंने लिखा, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्रीराम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नए मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी है। दोपहर 12 बजे करीब सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी और दर्पण व लेंस से जुड़े एक विस्तृत तंत्र द्वारा उनका सूर्य तिलक हुआ। दुबई में कैसे कृत्रिम बारिश की कोशिश ले आई प्रलय, कुछ घंटों में बरसा 1.5 साल का पानी। रेगिस्तान के शहर के तौर पर मशहूर दुबई में फिलहाल बाढ़ का हाहाकार है। मशहूर शॉपिंग मॉल्स में पानी भरा है, पार्किंगों में गाड़ियां तैर रही हैं और सड़कें तालाब बनी पड़ी हैं। हालात यह है कि एयरपोर्ट भी बाढ़ में डूब गया है और हवाई पट्टी ही नहीं दिख रही। शहर का ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम भी ठहर गया है। आखिर रेतीली जमीन पर अचानक इतनी बारिश क्यों हुई? यह जल प्रलय क्यों आई है? हर किसी का यही सवाल है। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह साइंस के इस्तेमाल से हुई गलती है, जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाए गए थे। क्लाउड सीडिंग वह तकनीक है जिसके जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है, लेकिन यह पूरा प्लान तब फेल हो गया जब कृत्रिम बारिश की कोशिश में बादल ही फट गया। कहा जा रहा है कि इतनी बारिश महज कुछ घंटों में हो गई, जो 1.5 साल में हुआ करती थी। इसका असर हुआ कि पूरा शहर जलमग्न हो गया और ऐसी जल प्रलय आई जो दुबई के बारे में किसी ने सोची भी नहीं थी। दुबई के अलावा एक और शहर फुजैरा में भी यही हालात है। यहाँ 5.7 इंच तक बारिश हुई है। इस बारिश के चलते रास अल खैमा में एक शख्स की मौत हो गई। वह अपनी कार से गुजर रहा था, लेकिन बाढ़ के पानी में उसकी गाड़ी ही बह गई। दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स में से एक मॉल ऑफ अमीरात की दुकानों का ऐसा हाल हुआ है कि छतों से पानी टपकने लगा। यही नहीं, कुछ दुकानों की तो छत ही गिर पड़ी। दुबई के मौसम की जानकारी रखने वालों का कहना है कि बीते 75 सालों के इतिहास में कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से ही लड़ेंगे चुनाव, कल कर सकते हैं ऐलान। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर चल रही अटकलबाजी पर कल यानी गुरुवार को विराम लग सकता है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव गुरुवार को कन्नौज आ रहे हैं। यही नहीं, सपाइयों का दावा है कि अखिलेश यादव इस दौरान यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि 23 अप्रैल को नामांकन कराने की तैयारी है। वहीं बीते दिन अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रचार के दौरान पूछे जाने पर खुलकर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारों में कन्नौज से लड़ने का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि कन्नौज से 2 दशक से भी ज्यादा पुराने रिश्ता है। कन्नौज मेरा घर है, इसे नहीं छोड़ सकता है। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव लड़ेंगे कि नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ। पहले चर्चा चली कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के भाई रणवीर सिंह के पौत्र तेज प्रताप यादव को कन्नौज से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज हुई। कहा जाने लगा कि अगर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया तो संभव है कि वहां से तेज प्रताप यादव को उतार दिया जाए। हालांकि तेज प्रताप को लेकर रामपुर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी थी। चर्चा है कि कन्नौज में सपा की देरी प्लान के तहत है। लोगों का कहना है कि अखिलेश इससे पहले दौरे में इशारा किया था, इस दौरान यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते थे पर नहीं किया। इसके पीछे वजह थी कि सपा को लगता था कि बीजेपी सुब्रत पाठक की जगह किसी और प्रत्याशी बना देती। यही नहीं, अगर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान पहले कर देते तो सपाइयों का सारा फोकस कन्नौज पर हो जाता है, ऐसे में दिक्कत होती है। हालांकि यह तो लोगों के तर्क हैं। लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे, यूपी में भाजपा की फिर लहर, देश भर में होगी 400 पार। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग के लिए आज प्रचार का शोर थमने वाला है। उससे पहले इंडिया टीवी CNX का एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें पूरे देश का मूड बताया गया है। इस सर्वे में अनुमान जताया गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को करीब 393 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह PM नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच होने जैसा होगा, जो लगातार दोहरा रहे हैं कि 4 जून को 400 पार का नतीजा आएगा। इस सर्वे में इंडिया अलायंस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात कही गई है। सर्वे का कहना है कि इंडिया अलायंस की सीटें 100 से भी कम रह सकती हैं। खास तौर पर कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है। सर्वे में कहा गया है कि भाजपा एक बार फिर से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप करेगी। इसके अलावा यूपी और बिहार में भी उसे शानदार नतीजा मिलेगा। सर्वे के अनुसार यूपी में भी भाजपा गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी और करीब 76 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी महज 4 सीटों पर ठहर सकती है। इस पोल में दावा किया गया है कि कांग्रेस का इस बार यूपी से खाता भी नहीं खिलेगा, यानी कांग्रेस को अमेठी के बाद अपना एक और गढ़ रायबरेली भी गंवाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के अनुसार यूपी के रुहेलखंड, अवध और पश्चिम यूपी जैसे इलाकों में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलेगी। RLD और भाजपा के गठबंधन को पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर जीत मिलेगी, जहां पहले राउंड में मतदान होना है। इसके अलावा रुहेलखंड की 12 में से 11 सीटें मिल सकती है। यह सर्वे बता रहा है कि पूर्वांचल में भाजपा को 29 में से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 2 और अपना दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसमें दिलचस्प आंकड़ा अवध का है, जहां की कुल 14 सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। सभी सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावना है। कभी यह इलाका कांग्रेस का गढ़ होता था और वह रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी जैसी सीटों पर जीतती थी, लेकिन इस सर्वे के अनुसार रायबरेली में भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। मध्य यूपी की भी 13 सीटों में से 11 पर भाजपा के जीतने की उम्मीद है, जबकि सपा के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। विराट कोहली बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त कर सकते हैं मोहम्मद रिजवान। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड संयुक्त रूप से विराट कोहली और बाबर आजम के नाम दर्ज है। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ने 3000 T20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा 81वीं पारी में छुआ था। विराट ने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था और वहीं बाबर आजम ने 30 सितंबर 2022 में इंग्लैंड के ही खिलाफ लाहौर में यह उपलब्धि हासिल की थी। दोनों ही बैटर ने 81 से 81 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ और अपनी होम कंट्री में यह उपलब्धि हासिल की थी। विराट और बाबर का यह रिकॉर्ड अब खतरे में नजर आ रहा है। मोहम्मद रिजवान दोनों के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक झटके में ध्वस्त कर सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 18 अप्रैल को होना है। सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाना है। मोहम्मद रिजवान को 3000 रनों का आंकड़ा छूने के लिए महज 19 रनों की जरूरत है। रिजवान ने 90 मैचों की 78 T20 इंटरनेशनल पारियों में 127.55 के स्ट्राइक रेट और 48.86 के औसत से कुल 2981 रन बनाए हैं। अगर रिजवान इस सीरीज के दौरान 2 पारियों के अंदर 19 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली और बाबर आजम दोनों का ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HTSmartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।